मैंने लिंक्डइन पर 100 से ज्यादा नौकरियों के लिए आवेदन किया है और यह सिर्फ लिंक्डइन की बात है।
अभी जॉब मार्केट में मेरा नाम कैटलिन है। मैं एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हूँ और मुझे एक भी नौकरी मिलने से पहले मैंने 647 पदों के लिए आवेदन किया। कोई मुझे इंटरव्यू तक नहीं देता।
मैं नौकरी पाने में असमर्थ हूँ।
मुझे समझ नहीं आता कि लोग फुल टाइम नौकरी कैसे पा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता।
ये कोई अपवाद नहीं है, ये पूरे समूह की वर्तमान वास्तविकता है। 20 साल पहले जीवन का महान मार्ग बहुत सरल था। स्कूल से स्नातक होना, विश्वविद्यालय जाना, डिग्री हासिल करना और सीधे नौकरी पर लग जाना। एक ऐसी नौकरी जिसमें आप अपना शेष जीवन व्यतीत करेंगे। सरल, लेकिन ये बात अपने 22 साल के औसत व्यक्ति को समझाएं और वे हंसेंगे। यह कोई रहस्य नहीं है कि चीजें बदल गई हैं, लेकिन पिछले एक साल में चीजें और भी अधिक बदल गई हैं। नौकरी की लिस्टिंग कम हो रही है जबकि नौकरी के लिए आवेदन करने वालों की संख्या बढ़ रही है, और इसका नतीजा है आज के युवाओं के लिए बेरोजगारी और अल्प रोजगार का संकट। इससे कई युवा स्नातकों की आंखें खुली की खुली रह गई हैं।
2025 की क्लास के बारे में हमें बात करने की जरूरत है। अगर आप हाल ही में स्नातक हुए हैं और नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, ये संख्याएं हैं। नौकरियां कम हुई हैं और योग्य आवेदकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाल ही में स्नातक हुए लोगों के लिए बेरोजगारी दर का 3 महीने का मूविंग एवरेज फिलहाल लगभग 5.3% है, जो राष्ट्रीय औसत 4.2% से काफी ज्यादा है। यह एक ऐतिहासिक विसंगति है। ये पहली बार है जब नए स्नातकों के लिए बेरोजगारी दर इतनी अधिक रही है। इससे पता चलता है कि शुरुआती स्तर की नौकरियां आय द्वारा ली जा रही हैं। अब ऐसा हो रहा है।
दुख की बात है कि ये दुनिया भर में चलन है। ऑस्ट्रेलिया में स्नातकों के लिए नौकरी के विज्ञापन साल दर साल कम होते जा रहे हैं। इस बीच स्नातक विश्वविद्यालयों से किसी कारखाने की तरह बाहर निकल रहे हैं। ब्रिटेन में विश्वविद्यालय के स्नातकों को 2018 के बाद से सबसे कठिन नौकरी बाजार का सामना करना पड़ रहा है। आधे से अधिक कॉलेज स्नातकों को बेरोजगार माना जाता है। चीन में युवा बेरोजगारी दर 17% थी, लेकिन अमेरिका में हाल ही में स्नातक होने वालों के बेरोजगार होने की संभावना सामान्य कार्यबल की तुलना में अधिक है। ये सब उन लोगों के लिए बिल्कुल विनाशकारी है जिन्होंने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इतनी मेहनत की है, लेकिन उन्हें लगता है कि उनसे झूठ बोला गया है। तो इसका कारण क्या है और यह कब तक रहेगा? स्पष्टता और समझ में मदद करने के लिए मैंने इस एपिसोड को 3 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1, क्या आई वास्तव में शुरुआती स्तर की नौकरियां ले रहा है? नंबर 2, व्यापार और टैरिफ चिंताओं के कारण भर्ती कैसे रुक गई है? और नंबर 3, महामारी के बाद नौकरी बाजार में मंदी। यदि आप छात्र हैं या हाल ही में स्नातक हैं, तो जुड़े रहें। हम इस बारे में बात करेंगे कि स्थिति के बारे में क्या किया जा सकता है और इस निराशाजनक नौकरी बाजार को पार करने के लिए क्या अध्ययन करना अभी भी फायदेमंद हो सकता है। और अंत में मैं आप लोगों से सुनना चाहता था, तो मैंने अपने YouTube कम्युनिटी पेज पर एक पोल चलाया और इस एपिसोड के अंत में हम आपके कुछ कमेंट्स और वोट्स पर नजर डालेंगे। तो आइए युवा ग्रेजुएट्स के साथ रोजगार संकट पर एक नजर डालते हैं। आप टोल फ्यूजन टीवी देख रहे हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भविष्य के AI का सबसे डरावना हिस्सा संभावित नौकरी का नुकसान है। औद्योगिक क्रांति के बाद से इंसानों को हमेशा चिंता रही है कि तकनीक उनकी नौकरियां छीन लेगी, और इसकी शुरुआत 19वीं सदी से होती है जब लाइट्स और कपड़ा मजदूर मशीनीकृत करघों को तोड़ देते थे और मिलों में आग लगा देते थे। हर बड़ी तकनीक या ऑटोमेशन लहर के साथ चिंता की लहर आती है कि ये आविष्कार हमारे लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। उदाहरण के लिए, बिना घोड़े वाली गाड़ी के आविष्कार ने बहुत सारी नौकरियों को खत्म कर दिया, लेकिन ऑटोमोबाइल बनाने, बेचने और उनकी सर्विसिंग में हजारों नई नौकरियां पैदा की। आज आप अर्थशास्त्रियों और निश्चित रूप से तकनीकी दिग्गजों के CEO को AI के बारे में एक ही राग अलापते हुए सुनते हैं, लेकिन यहां अंतर यह है कि हालांकि AI एक उपकरण है, लेकिन यह इससे पहले AI किसी भी उपकरण से अलग है। ये सचमुच पहला उपकरण है जिसे इंसानों ने खोजा है, जिससे सामान्य संज्ञानात्मक श्रम प्राप्त होता है, और लोग अब समझने लगे हैं कि इसका क्या मतलब है। यह एंड्रू कोल हैं। उन्होंने हाल ही में एक सेमी वायरल वीडियो पोस्ट किया था जिसमें बताया गया था कि कैसे उनके 3 कौशलों को AI ने 3 अलग अलग बार बदल दिया। मैं अब आपको उसका एक हिस्सा दिखाता हूँ। वो जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुने, खासकर इस एपिसोड के बाकी हिस्सों के संदर्भ में। AI ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब मुझे पता है कि यह नाटकीय लग सकता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्यों। मुझे हमेशा से रचनात्मक प्रयास और प्रोजेक्ट पसंद रहे हैं, और मैंने एक YouTube चैनल के लिए एक लेखक के रूप में काम किया। आज तक मैंने एक सीरीज के लिए जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो वाकई बहुत लोकप्रिय हुई, उसे 3 मिलियन व्यू मिले। हमने दूसरा वीडियो बनाया और वो चैनल पर दूसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो बन गया। उसने मुझे निकाल दिया। फिर इस आदमी ने मेरी पहले लिखी स्क्रिप्ट के आधार पर AI का इस्तेमाल करके और भी कम गुणवत्ता वाले वीडियो बनाए, जिससे वही सीरीज चलती रही। तब से अब तक उसे लाखों व्यूज मिल चुके हैं। तो फिर मैंने सोचा, ठीक है, अमेज़न पर किताबें प्रकाशित करूं क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे लिखने का हुनर है। YouTube पर ये गुरु कीवर्ड सर्च करके और किताबें लिखकर AI का इस्तेमाल करके अमीर बन गए। मैं बस मुकाबला नहीं कर सकता, मैं इतनी तेजी से नहीं लिख सकता, मैं यहाँ शिकायत करने नहीं आया हूँ, है ना? लेकिन मुझे अभी एहसास हुआ है कि मैं इस AI से मुकाबला नहीं कर सकता दोस्त, और यही समस्या है जो मूल रूप से मुझे 3 साल से परेशान कर रही है। मैं पिछले 3 सालों से बड़े पैमाने पर हुनर हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, हुनर के लिए मानकों को इस हद तक कम कर रहा हूँ कि आपका हुनर अचानक बेकार हो जाए, और AI मेरे साथ ऐसा करने में अहम भूमिका निभाता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई और भी ऐसा महसूस करता है कि आने वाली किसी भी नई AI तकनीक से उनके हुनर का पूरी तरह से अवमूल्यन हो जाएगा। एंड्रू की कहानी सुनने के बाद आप उसकी भावनाओं को महसूस किए बिना नहीं रह सकते। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि एंड्रू की कहानी वही है जो मानवता के विकास के साथ हमेशा होती है। जेन जेड को AI के साथ तालमेल बिठाना ही होगा, लेकिन दूसरी तरफ जो अभी एंड्रू के साथ हो रहा है वो 5 साल में हम में से बहुत से लोगों के साथ हो सकता है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। उदाहरण के लिए, हालांकि कोल्ड फ्यूजन वीडियो को पूरी तरह से हाथ से बनाने में 1 महीना लग सकता है, लेकिन जब वीडियो पोस्ट किया जाता है तो हमेशा ढेर सारे कमेंट आते हैं जिसमें कहा जाता है कि वीडियो AI द्वारा बनाया गया है और मैं AI हूँ, और यह मुझे सोचने पर मजबूर करता है और मुझे दिखाता है कि हम कहाँ हैं। वैसे भी ये किसी वीडियो को बर्बाद करने के लिए नहीं है, और हाँ, हम एपिसोड में आगे चलकर समाधान और उससे निपटने के तरीकों पर बात करेंगे, इसलिए चिंता न करें। मैं एंड्रू की कहानी को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यह हमारे समय की हकीकत है, ये सोचने और चर्चा करने लायक है भले ही यह असहज क्यों न हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में पूछे गए पहले सवाल का जवाब है, हाँ, AI ग्रेजुएट लोगों की नौकरियां छीन रहा है। 2023 में गोल्डमैन सैक्स ने भविष्यवाणी की थी कि AI 300 मिलियन नौकरियां खत्म कर सकता है। 2 साल बाद हमें इसके कुछ सबूत दिखाई देते हैं, कम स्किल वाली नौकरियों से लेकर एडमिन रोल या क्रिएटिव जॉब्स, व्हाइट कॉलर जॉब्स और यहाँ तक कि डिग्री वाली जॉब्स तक सब खतरे में हैं। अब AI इनमें से कुछ काम कर सकता है बेशक, और हम सभी जानते हैं कि अभी इसकी सफलता की अलग अलग डिग्री है। उदाहरण के लिए, एक हालिया रिपोर्ट में पाया गया कि 55% कंपनियों को अपने कर्मचारियों को AI से बदलने का पछतावा है, लेकिन ये सोचना भोलापन होगा कि AI की क्षमताएं हमेशा वैसी ही रहेंगी। एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोदाई ने चेतावनी दी है कि AI अगले 5 सालों में सभी एंट्री लेवल व्हाइट कॉलर नौकरियों में से आधी को खत्म कर सकता है, और इसके संकेत भी हैं। ऑक्सफोर्ड के एक आर्थिक अध्ययन में पाया गया कि तकनीकी क्षेत्रों में स्नातकों के बीच बेरोजगारी दर असामान्य रूप से अधिक है, जहां AI ने तेजी से बढ़त हासिल की है। कंप्यूटर विज्ञान और वित्त जैसे उद्योग, कुछ तकनीकी कंपनियां अब जूनियर डेवलपर्स को काम पर रखने की जहमत नहीं उठा रही हैं, केवल मध्यम स्तर और उससे ऊपर के लोगों को रख रही हैं। अन्य ऐसे वर्चुअल वर्कर बनाने की होड़ में हैं जो जूनियर कर्मचारियों की जगह ले सकें। उदाहरण के लिए, जब वो दिन आएगा जब बग फिक्स के लिए मानवीय विशेषज्ञता के बिना AI विश्वसनीय रूप से कोडिंग कर सकेगा, तो आपको क्या लगता है कि जूनियर कर्मचारियों के मामले में कंपनियां क्या करेंगी? इस तरह के मंच पर बैठा लगभग हर कोई आपसे कहेगा कि आपके बच्चों को कंप्यूटर साइंस सीखना बहुत जरूरी है। ओह, सभी को प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए, और वास्तव में ये बिल्कुल उल्टा है। ये हमारा काम है कि हम ऐसी कंप्यूटिंग तकनीक बनाएं जिसमें किसी को प्रोग्रामिंग न करनी पड़े। दुनिया में हर कोई अब प्रोग्रामर है। ये चमत्कार है, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता का चमत्कार है। पहली बार हमने अंतर को पाटा है, प्रौद्योगिकी अंतर पूरी तरह से पाट दिया गया है। अभी तक AI बहुत सारी गलतियां करता है और उस पर पहली नजर में भरोसा नहीं किया जा सकता है, और कई नौकरियों के लिए मानवीय पर्यवेक्षण अभी भी आवश्यक है, लेकिन ये किसी भी समय बदल सकता है। जल्द ही एक मानवीय पर्यवेक्षक और AI कुछ क्षेत्रों में 10 कर्मचारियों की जगह ले सकते हैं, लेकिन हम इसे और अधिक सकारात्मक रूप से भी देख सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि कौशल और प्रेरणा को देखते हुए भविष्य के AI सिस्टम एक व्यक्ति को अपनी कंपनी शुरू करने में भी सक्षम करेंगे जो पहले नहीं कर सकता था, और यह खोए हुए स्नातकों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन कॉर्पोरेट संदर्भ में AI सुपरविजन पर वापस आते हैं। यूरोप में हाई रिस्क AI सिस्टम के लिए मानवीय सुपरविजन को कानून में लिखा गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे कई अन्य देशों में अभी तक इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। तो आगे क्या? यूनिवर्सिटी डिग्री और AI सुपरविजन, ये हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन कुछ भी संभव है। आदर्श स्तर पर सबसे स्पष्ट समाधान यह है कि यदि आप विश्वविद्यालय जा रहे हैं या विश्वविद्यालय वापस जा रहे हैं, तो अपनी लेन सावधानी से चुनें। हालांकि AI अभी शुरुआती दौर में है और अभी भी अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, लेकिन इसमें सुधार होने जा रहा है। इसलिए AI में अपस्किलिंग पर गंभीरता से विचार करें। लेकिन ऐसा कहने के बाद मैं एक और दृष्टिकोण प्रस्तुत करता हूं। मैं यहां केवल शैतान के वकील की भूमिका निभा रहा हूं। अब एक छोटी सी संभावना है कि हम कॉम बबल को दोहराते हुए देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में एक छोटी सी संभावना है कि हमारे पास मौजूद AI सिस्टम एक ऐसी सीमा तक पहुंच सकते हैं जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते हैं। मूल रूप से हम उनकी भविष्य की क्षमता को बहुत अधिक आंक रहे हैं। जैसे गूगल और फेसबुक कॉम क्रैश की राख से उभरे, वैसे ही AI सिस्टम की अगली पीढ़ी भी होगी। कुछ सालों तक लोगों को एहसास हो सकता है कि AI उतना अच्छा नहीं है जितना वादा किया गया था, लेकिन फिर हम कुछ सालों में AI की तरक्की की दूसरी लहर देखेंगे। इसलिए कुछ नौकरियां हमारी सोच से ज्यादा सुरक्षित हो सकती हैं, कम से कम फिलहाल के लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और AI उतनी ही तेजी से तरक्की करता रहता है, तो कुछ सलाह यही होगी कि अगर आप उन्हें हरा नहीं सकते तो उनके साथ जुड़ जाएं। लिंक्डइन के अर्थशास्त्र के प्रमुख कोरी कांटिगर के अनुसार, नियोक्ताओं को शायद अभी तक नहीं पता है कि वे AI के साथ क्या करने जा रहे हैं, लेकिन वे ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं जो भविष्य में इसके साथ काम कर सकें और उन्हें सफलता दिला सकें। उद्धरण समाप्त। यह उपलब्धि हासिल करने में कोई बुराई नहीं है। जो लोग अभी अभी स्नातक हुए हैं, उन्हें स्थिति सामान्य होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये दुनिया का अंत नहीं है। लोगों का करियर बदलना कोई असामान्य बात नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है और मैं तेल और गैस क्षेत्र में काम कर रहा था, लेकिन मैं यहाँ आ गया। तो हर हाल में नौकरी की तलाश जारी रखें, लेकिन अगर आप में जुनून है तो कोई साइड हसल या बिजनेस शुरू करने से न डरें। आपकी मदद करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा टूल मौजूद हैं। आगे बढ़ने से पहले बस इतना कहना चाहता था। दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोगों ने इस नए परिदृश्य का फायदा उठाया है। 21 साल के रॉय ली को ही लीजिए। उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। क्यों? उन्होंने एक ऐसा AI टूल बनाया जो उनके लिए एग्जाम और इंटरव्यू ले सकता था। उनका टूल यूनिवर्सिटी में बहुत मशहूर हुआ। निकाले जाने के बाद उन्होंने कुछ ही हफ्तों में एक स्टार्टअप शुरू किया और लाखों डॉलर की फंडिंग जुटाई। उनका ऐप रियल टाइम में किसी समस्या का स्क्रीनशॉट लेता है, फिर उन्हें एक बड़े लैंग्वेज मॉडल के जरिए चलाता है जो इंसानों के लिए एक ऐसा रास्ता बनाता है जिससे ऐसा लगता है कि वे वास्तव में समस्या का हल कर रहे हैं। ये स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर के लिए एक अनडिटेक्टेबल ओवरले की तरह चलता है और स्क्रीन के चारों ओर विंडो को घुमाता है ताकि आपकी नजर नकल करने वाली सामग्री पर न पड़े। और ये तकनीक नकल पकड़ने वाले इंटरव्यूअर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को बाईपास करती है। यह वाकई काम करता है और उन्हें मेटा और अमेज़न जैसी कंपनियों से ऑफर मिले। और यह काव्यात्मक है कि वही कंपनियां जिन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उनका लक्ष्य AI के साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को स्वचालित करना है, उन्हें अभी भी इंसानों को काम पर रखने की जरूरत है और AI के कारण उनकी इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। हालांकि अमेज़न को कविताएं पसंद नहीं है और जब उन्हें पता चला कि रॉय ने धोखा दिया है तो उन्होंने कोलंबिया में उसकी मुखबिरी की और उचित कार्रवाई करने की मांग की। खैर, रॉय द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किए गए इस गोपनीय पत्र के आधार पर उसे कोलंबिया से निकाल दिया गया है और रॉय एक टेक ब्रो बिलियनेयर बनने की सही राह पर है। उसका ऐप इस साल पहले ही 2 मिलियन से अधिक का रेवेन्यू करने की राह पर है। युवा पेशेवरों के लिए इस समस्या का एक समाधान उद्यमिता के माध्यम से अपना खुद का कारोबार शुरू करना है। 2023 में 18 से 24 वर्ष की आयु के व्यक्ति किसी भी अन्य आयु वर्ग की तुलना में अधिक दर से व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, जिससे वे अमेरिका में उद्यमियों का सबसे तेजी से बढ़ता समूह बन गए हैं। वास्तव में युवा उद्यमिता रिकॉर्ड तोड़ संख्या में है, लेकिन ये कोई रहस्य नहीं है कि व्यवसाय चलाना कितना भारी हो सकता है। फ्रीलांसिंग भी एक व्यक्ति के लिए एक चुनौती है। तो शुरुआत कहाँ से करें? यहाँ हमारे प्रायोजक ऑडो आते हैं। ऑडो एक व्यवसाय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है जो व्यवसायों और उन्नत फ्रीलांसरों को उनके संचालन को सुव्यवस्थित करने में मदद करता है। ऑडो में CRM, अकाउंटिंग, HR, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग से लेकर इन्वेंट्री और ई कॉमर्स तक सब कुछ शामिल है। मान लीजिए कि आप एक छोटे से कैफे हैं। ऑडो आपको ऑनलाइन बिक्री के लिए एक ई कॉमर्स स्टोर बनाने, बिक्री के बिंदुओं के माध्यम से ऑर्डर ट्रैक करने, चालान भेजने, स्टॉक और इन्वेंट्री का प्रबंधन करने और इसे अपने वित्त के साथ सिंक करने की सुविधा देता है। अब 5 अलग अलग ऐप या स्प्रेडशीट को संभालने की जरूरत नहीं है, ये सब अपने आप एक साथ काम करता है। ये शक्तिशाली, लचीला और आश्चर्यजनक रूप से किफायती है। आपका पहला ऐप जीवन भर के लिए मुफ्त है और पूरा सूट केवल $24.90 से शुरू होता है। एकल फ्रीलांसरों से लेकर पूर्ण व्यवसायों तक 15 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता ODU पर भरोसा करते हैं। इसलिए यदि आप अपने साइड हसल को एक प्रो की तरह चलाना चाहते हैं तो विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ODU देखें। एपिसोड के सेगमेंट को प्रायोजित करने के लिए ODU को धन्यवाद। और अब कहानी पर वापस आते हैं। हम में से कई लोगों के लिए ये पहली बार है जब टैरिफ इतना गर्म मुद्दा बना है। क्या वे वास्तव में अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं या मदद करते हैं, यह एक और कहानी है। लेकिन नौकरी के बाजार के संदर्भ में एक बात तय है, जब कंपनियां घबरा जाती हैं तो वे भर्ती करना बंद कर देती हैं।
काम की तलाश करना कठिन समय होता है और अगर आप हाल ही में कॉलेज से स्नातक हैं तो यह और भी कठिन है। 2025 में कंपनियों के भर्ती करने की संभावना कम होगी और कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने या सेवानिवृत्त होने की संभावना कम होगी, जिससे करियर की सीढ़ी के निचले पायदान पर कम अवसर होंगे। AI तकनीक जैसे क्षेत्रों में प्रवेश स्तर के काम को बदलने की धमकी दे रहा है और कानून स्कूल के आवेदन उद्योग की क्षमता से अधिक बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लागत में कटौती के प्रयासों ने सरकारी एजेंसियों, गैर लाभकारी संस्थाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य में नौकरियों को खत्म कर दिया है। यह उन युवाओं को छोड़ देता है जिन्होंने अपने किशोरावस्था और विश्वविद्यालय के वर्षों को भविष्य की तैयारी में बिताया है।
डॉयचे बैंक के एक अर्थशास्त्री ब्रेट रायन के अनुसार, व्यापार और टैरिफ के आसपास अनिश्चितता के कारण भर्ती कम हो रही है, लेकिन छटनी भी कम हो रही है। हालांकि कंपनियां घबराई हुई नहीं है, लेकिन वे नए टैलेंट को भी नहीं ला रही है। संक्षेप में, यह एक रोजगार ठहराव है। आप सोचेंगे कि कॉलेज ग्रेजुएट्स को काम पर रखना अधिक समझदारी भरा होगा, क्योंकि वे युवा, शिक्षित और काम पर रखने में सस्ते होते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। हार्वर्ड के अर्थशास्त्री डेविड डेमिंग बताते हैं, युवा कर्मचारियों को पूंजी की तरह निवेश के रूप में देखा जाता है और अनिश्चित समय में निवेश वह पहली चीज है जिस पर व्यवसाय कटौती करता है। लिंक्डइन के मुख्य अर्थशास्त्री करेन किम्ब्रो का भी मानना है कि कंपनियां एंट्री लेवल वर्कर्स को काम पर रखने के बारे में नहीं सोच रही हैं, क्योंकि उन्हें अक्सर काम सीखने में समय लगता है और आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। हालांकि तकनीकी रूप से कुछ मापदंडों के अनुसार अमेरिका में बेरोजगारी अभी कम है, लगभग 4%। यह आंकड़ा युवा स्नातकों के लिए एक वास्तविक संकट को छुपाता है। कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए बेरोजगारी दर 6.6% रही है, महामारी को छोड़कर एक दशक में सबसे अधिक। ये पहली बार है कि कॉलेज ग्रेजुएट बेरोजगारी दर सामान्य बेरोजगारी दर से अधिक है, और यह कुछ कह रहा है। सेंट लुइस के फेडरल रिजर्व बैंक के अनुसार, अमेरिका में भर्ती की दर दशक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, और हैरानी की बात है कि नौकरियों में कटौती इस साल 47% तक बढ़ गई है। वॉटन और स्टैनफोर्ड जैसे प्रतिष्ठित स्कूलों के MBA ग्रेजुएट भी नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका को निर्यात पर केवल 10% टैरिफ लगाया जा सकता है, लेकिन हमारी छोटी और खुली अर्थव्यवस्था हमें वैश्विक गतिविधियों में बदलाव के प्रति संवेदनशील बनाती है, और यह नौकरी के बाजार में दिखाई देता है। हालांकि बेरोजगारी दर 4.1% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बनी हुई है, अर्थव्यवस्था में वास्तव में 2,500 नौकरियां कम हुई हैं, जबकि 20,000 नई नौकरियां जुड़ने की उम्मीद थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, यह इस बात का प्रमाण है कि अमेरिकी व्यापार नीतियों की अनियमित प्रकृति को लेकर व्यापार जगत चिंतित है। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि स्नातकों की नौकरियों में कमी क्यों आ रही है, लेकिन अभी तक ये दो कारण काफी हद तक समझ में आते हैं। शुरुआती स्तर के स्नातक कार्य वे हैं जिन्हें जेनरेटिव AI सबसे अच्छा कर सकता है, कम से कम सीमित क्षमता में। बुनियादी विश्लेषण, ईमेल और शोध के बारे में सोचें तो स्नातकों पर दोहरी मार पड़ रही है। जो काम AI कर सकता है वो करेगा, और जो काम वो नहीं कर सकता वो आर्थिक अनिश्चितता के कारण रुक गए हैं। इन सब के अलावा फर्जी जॉब पोस्टिंग भी हैं, जहां कंपनियां पहले से भरी हुई फर्जी जॉब पोस्ट को ओपन पोस्ट के तौर पर पोस्ट करती हैं। ऐसा आमतौर पर उम्मीदवारों के बारे में डेटा हासिल करने या अन्य कारणों से कंपनी के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। क्वार्ट्ज के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल 60% से ज्यादा कंपनियों का कहना है कि वो फर्जी जॉब पोस्ट करती हैं ताकि कर्मचारियों को विश्वास हो जाए कि नए कर्मचारी आने से उनका काम का बोझ कम हो जाएगा, और 62% कंपनियां ऐसा इसलिए करती है ताकि कर्मचारियों को लगे कि उन्हें उनकी जगह लेने का मौका मिलेगा। हैरानी की बात है, बहुत से लोग ऐसी नौकरियों के लिए आवेदन करने से निराश हो जाते हैं जिनका किसी को नौकरी देने का कोई इरादा नहीं होता।
अगर आप नई नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो बेशक आप इन फर्जी नौकरियों के लिए आवेदन करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ऐसा होता है कि ऑनलाइन दिखने वाली सभी ओपन जॉब पोस्टिंग असली नहीं होती है।
इस एपिसोड के अंत में हम जानेंगे कि आप लोग इस जॉब मार्केट के बारे में क्या कहते हैं, लेकिन अभी के लिए आइए युवा स्नातकों के संघर्ष के तीसरे कारण पर चलते हैं। महामारी का सबसे बुरा दौर भले ही बीत गया हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसने हम सभी के काम करने के तरीके को बदल दिया है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चीजें फिर से पहले जैसी हो रही हैं। सैद्धांतिक रूप से रिमोट जॉब्स महान समानता ला सकते थे, जिससे हर किसी के लिए कहीं भी अवसर खुल सकते थे, और कुछ समय के लिए ऐसा हुआ भी। अब रिमोट वर्क बूम खत्म हो गया है और कर्मचारी नौकरी छोड़ना नहीं चाहते। लिंक्डइन पर 5 में से केवल 1 नौकरी रिमोट या हाइब्रिड है, फिर भी उन्हें सभी आवेदनों का 60% मिल रहा है। इस्तीफे के दौरान कई लोगों ने अधिक पैसे और संतुष्टि की चाह में अपनी नौकरी छोड़ दी, जो एक स्वस्थ नौकरी बाजार की पहचान है। इससे नए कर्मचारियों के लिए नौकरी बदलने और आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया। साथ ही अमेरिका को ही लें तो नौकरी बदलने का तरीका पहले जैसा नहीं रहा। 2023 में नौकरी बदलने वालों को लगभग 7.7% वेतन वृद्धि मिली, और जो रुके रहे उन्हें 5.5% वेतन वृद्धि मिली। लेकिन अब 2025 में स्थिति उलट गई है। जो कर्मचारी रुके रहे उन्हें 4.6% की बढ़ोतरी मिली, जबकि नौकरी बदलने वालों को केवल 0.2% की मामूली बढ़ोतरी मिली। ग्राहक सफलता विशेषज्ञ जोस फोगल ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि $1,70,000 सालाना की नौकरी से निकाले जाने के बाद उन्होंने $1,20,000 की तनख्वाह वाली नई नौकरी स्वीकार की, क्योंकि कोई भी पहले की तरह पैसे नहीं दे रहा है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आपके पीछे 50 लोग हैं जो बाद में आपको कॉल करेंगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण समाप्त। हम जो देख रहे हैं वह कार्यस्थल की वफादारी के बेबी बूम युग की वापसी जैसा लगता है, या कम से कम इसकी एक सूक्ष्म प्रतिध्वनि है। आर्थिक चिंता आय और वैश्विक व्यापार अस्थिरता के बीच यह कोई आश्चर्य नहीं है कि इतने सारे कर्मचारी अपने पास मौजूद चीजों पर अड़े रहना पसंद कर रहे हैं। कम लोगों के नौकरी छोड़ने का मतलब है कम बैकफिल अवसर। ये शुरुआती स्तर की सीढ़ी को अवरुद्ध कर सकता है और डोमिनोज प्रभाव पैदा कर सकता है। तो हम सभी अब तक समझ गए हैं कुछ वास्तविक समस्याएं हैं, लेकिन हमें वास्तविक समाधानों की आवश्यकता है। तो वो कौन से क्षेत्र हैं? इस अध्ययन के अनुसार ये वो क्षेत्र हैं जो आई से सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। पाइल ड्राइवर ऑपरेटर, रेल ट्रैक बिछाने वाले, जल उपचार संयंत्र प्रणाली ऑपरेटर और ड्रेज ऑपरेटर जैसी नौकरियां आपको रात में अच्छी नींद देंगी। लेकिन लेखक, बिक्री प्रतिनिधि, इतिहासकार या अनुवादक ऐसा नहीं है। तो अब स्नातक कहां जा सकते हैं? लेखा, भविष्य में आई उसके लिए खतरा हो सकता है। नर्सिंग और स्वास्थ्य सेवा, हाँ ये आई के लिए सुरक्षित है, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं करना चाहता। इसके अलावा बहुत से मामलों में कम वेतन और थकान वास्तविक है। कंप्यूटर विज्ञान में आई अभी बुनियादी बातों को ही संभाल पा रहा है, लेकिन तकनीकी कंपनियां इंसानों की जगह एआई का इस्तेमाल करने में जल्दबाजी कर रही हैं। ग्राफिक डिजाइन, कला, पत्रकारिता, कॉपीराइटिंग, एनिमेशन, ये क्षेत्र इतने जोखिम भरे हैं कि अब इनके बारे में गंभीरता से सोचना भी मुश्किल है। शिक्षा एक अच्छा विकल्प है, लेकिन थकान और वेतन भी एक वास्तविक समस्या है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या तेल और गैस इंजीनियरिंग के क्षेत्र अभी ठीक लग रहे हैं, लेकिन इससे बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बचते। सीधे शब्दों में कहें तो सबसे सुरक्षित क्षेत्र वे हैं जिनमें शारीरिक काम या आमने सामने मानवीय संपर्क शामिल है। तो क्या किया जाए? जेन जेड के बहुत से लोग विश्वविद्यालय से दूर जा रहे हैं और ब्लू कॉलर काम में अपना रास्ता तलाश रहे हैं। यह एक दिलचस्प घटनाक्रम है। अमेरिकी कॉलेज में नामांकन में ऐतिहासिक गिरावट। अमेरिकी कॉलेज के नए छात्रों का नामांकन घट रहा है। कई स्कूलों में पहले ही नामांकन में गिरावट देखी जा रही है और पारंपरिक रूप से कॉलेज की डिग्री की आवश्यकता वाली नौकरियां अब उतनी विश्वसनीय नहीं रह गई हैं जितनी पहले हुआ करती थीं। कार्यबल में सबसे युवा पीढ़ी जेन जेड कॉलेज के अनुभव को ना कह रही है। इसके बजाय वे ब्लू कॉलर नौकरियों और कुशल ट्रेडों में प्रवेश कर रहे हैं जिनके लिए 4 साल की डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। वे ऐसे कौशल हासिल कर रहे हैं जो उन्हें आगे जाकर अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करते हैं, और इससे उन्हें वास्तव में भविष्य में अपनी कमाई की क्षमता निर्धारित करने का अवसर मिलता है। और जैसे जैसे पुराने ब्लू कॉलर कर्मचारी सेवानिवृत्त होने लगेंगे, हो सकता है कि जेन जेड कुशल श्रम अंतर को भरने के लिए आगे आए। जेफ्री हिंटन, जिन्हें एआई का गॉडफादर भी कहा जाता है, के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैरालीगल और कॉल सेंटर की नौकरियों की जगह ले लेगा। लेकिन अगर आप आई के बिना कोई नौकरी करना चाहते हैं, तो प्लम्बर या कोई ऐसा काम करें जिसमें व्यवहारिक कौशल और निर्णय लेने की क्षमता की आवश्यकता हो। दरअसल इस समय ट्रेड करने वालों का पलड़ा भारी हो सकता है, खासकर तब जब यूनिवर्सिटी की डिग्री की कीमत कम हो रही है। सुपर इंटेलिजेंस की दुनिया में आप लोगों से उनके करियर के बारे में क्या कहेंगे? हमें किस बारे में सोचना चाहिए? इस बीच मैं कहूंगा कि अभी बहुत समय लगेगा जब तक कि यह हमारी तरह शारीरिक हेरफेर करने में सक्षम नहीं हो जाता। ठीक है,
इसलिए प्लम्बर बनना एक अच्छा विकल्प होगा। बहुत से छात्र अपनी डिग्री पूरी करने के लिए एआई का उपयोग करते हैं, इसलिए वे एक अजीब चक्र में फंस गए हैं। छात्र डिग्री हासिल करने के लिए आई पर निर्भर हैं और उन्हें नौकरी पाने के लिए उन डिग्री की आवश्यकता है। ऐसी नौकरियां जो आई के कारण कुछ सालों में शायद मौजूद ही न हो। तो हम वास्तव में यहाँ क्या कर रहे हैं? जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, भौतिक दुनिया में वास्तविक मूल्य वर्धित कार्य का महत्व बढ़ता जाएगा। जब तक रोबोट नहीं आ जाते, वैसे यह आधा अधूरा मजाक है। रोबोट किसी भी अनुमान से ज्यादा तेजी से इंसानों की नौकरियां छीन रहे हैं, और 8 बड़े उद्योगों ने हाल ही में साबित किया है कि इंसानी कर्मचारी पूरी तरह से अप्रचलित हो रहे हैं। विमो ऑटोनोमस टैक्सी पहले ही बिना किसी इंसानी ड्राइवर के हर हफ्ते 200,000 सशुल्क सवारी परोस रही है, जबकि अमेज़न ने 750,000 वेयरहाउस रोबोट तैनात किए हैं जो किसी भी इंसानी कर्मचारी से ज्यादा तेजी से और सही तरीके से पैकेज सॉर्ट करते हैं। चीन में रोबोटिक गैस स्टेशन अटेंडेंट बिना इंसानी मदद के कारों में ईंधन भरते हैं, और 5 मिलियन रेसिपी पर प्रशिक्षित रोबोट शेफ हर बार एकदम सही सटीकता के साथ रेस्टोरेंट जैसा खाना बना रहे हैं। बोस्टन डायनेमिक्स रोबोट अब पेशेवर फिल्म कैमरे चला रहे हैं और फिल्म के दृश्यों को शूट करते समय बैकफ्लिप कर रहे हैं, पूरी तरह से इंसानी कैमरा ऑपरेटरों की जगह ले रहे हैं जिन्होंने दशकों तक इस कला में महारत हासिल की। सबसे भयानक उदाहरण हाई वोल्टेज पावर लाइन की मरम्मत करने वाले रोबोट हैं, क्योंकि उपयोगिता कंपनियों को पता है कि मशीनें कभी कट नहीं लगती, कभी गिरती नहीं है और कभी ओवरटाइम वेतन या स्वास्थ्य बीमा की मांग नहीं करती है। ये प्रोटोटाइप या भविष्य की अवधारणा नहीं है। इनमें से हर एक रोबोट अभी काम कर रहा है, कंपनियों के लिए पैसे कमा रहा है, जबकि इंसानी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है और उनकी जगह ले ली जा रही है। इसके अलावा डिग्री धारकों को कुल मिलाकर ज्यादा वेतन मिलता है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट के बीच वेतन अंतर कम हो रहा है। आपको यह अंदाजा लगाने के लिए कि पुराने जमाने से अब तक कितनी चीजें बदल गई हैं, सिर्फ 22% अमेरिकी वयस्कों का कहना है कि कॉलेज की डिग्री उनकी कीमत के लायक है। आखिरकार यह ज्यादातर अमेरिकियों के लिए सबसे महंगी चीजों में से एक है। लाखों अमेरिकियों में एक बात समान है, उन पर छात्र ऋण का बोझ है।
ऑस्ट्रेलिया में कम वेतन वाली नौकरियों में डिग्री धारकों की संख्या बढ़ रही है। इस बीच चीन में इतने ज्यादा ग्रेजुएट हैं कि नौकरी का बाजार ढह गया है। आखिरकार अगर पूरी नौकरी के लिए योग्य लोगों की भरमार है तो कोई भी ऐसा नहीं है जो वाकई में अलग हो।
ये उद्यमी अपने अनोखे प्रस्तावों के लिए ऑनलाइन हजारों फॉलोअर्स जुटा रहे हैं। तो यहाँ मेरी कंपनी में हम काम करने का दिखावा करते हैं, कोई गतिविधि नहीं है, आप बेरोजगार हैं तो मेरे पास आए और जो चाहे करें। चीन के शहर चोंगकिंग के व्यापारिक इलाके के बीचों बीच एक नकली कंपनी है।
ये रिसेप्शन एरिया है लेकिन यहाँ कोई नहीं है।
यहाँ करीब 15 लोग काम करने का नाटक कर रहे हैं। यह एक ऑफिस है जहाँ से खूबसूरत नजारा दिखता है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ वीडियो गेम खेलते हैं और झपकी लेते हैं। असल में ये नकली कर्मचारी बेरोजगार हैं। मैं अपने काम के माहौल की तस्वीरें लेता हूँ। मेरा परिवार हमेशा मुझसे पूछता है कि मैं क्या करता हूँ। मैं उन्हें सबूत दे सकता हूँ। यह एक नकली बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो बाद में अपने माता पिता को दिखाएगी। चीन में युवाओं की बढ़ती संख्या का कहना है कि वे दूसरों की आलोचना से बचने के लिए ऐसी कंपनियों में काम करते हैं। नौकरी का बाजार अच्छा नहीं है और जब आपके पास असली नौकरी होती है तो आपको अक्सर ओवरटाइम करना पड़ता है। पिछले साल चीन में युवाओं में बेरोजगारी 17% तक बढ़ गई, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है।
लेकिन आइए अंत में सकारात्मक रुख अपनाएं। अगर आपको कोई ट्रेड नहीं पढ़ना है, नर्सिंग या कंप्यूटर साइंस के बिना किसी भी तरह की इंजीनियरिंग नहीं करनी है, तो शायद एआई का नैतिक रूप से इस्तेमाल करके अपना खुद का बिजनेस शुरू करना सही तरीका हो सकता है। पहले से कहीं ज्यादा टूल्स मौजूद हैं, जब इंसानी क्रिएटिविटी के साथ मिलकर कुछ खास बनाया जा सकता है। नतीजा यह है कि आज और भविष्य में दुनिया पहले से बिल्कुल अलग दिखेगी। लेकिन फिर भी विकल्प मौजूद हैं। अगर आप युवा हैं, तो आपके पास सबसे कीमती संसाधन है, समय। और आप उस समय का इस्तेमाल ये पता लगाने में कर सकते हैं कि रोजगार के माहौल में मुश्किलों और चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग इस जॉब मार्केट के बारे में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले पोल में आप में से ज्यादातर ने कहा कि पिछले एक साल में जॉब मार्केट में गिरावट आई है। अब मैं समझता हूं कि यह सबसे साफ डेटा सेट नहीं था, क्योंकि यह उन लोगों के पक्ष में था जिन्हें नौकरी से जुड़ी समस्याएं थी और सीधे नतीजे देखने का कोई विकल्प नहीं था। लेकिन मेरी दिलचस्पी टिप्पणियों में ज्यादा थी। जियो प्लैनेट का एक दिलचस्प नजरिया है। उनका कहना है, आई एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम ने सरल एप्लीकेशन की अखंडता को नष्ट कर दिया है। जागरूकता और उचित तरीके से बदलाव के बिना आपका एप्लीकेशन कभी लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। उद्धरण चिन्ह, अगर यह सच है तो यह एक और तरीका होगा जिससे आई जॉब मार्केट को बदल रहा है। लेकिन इस बार नियोक्ता की तरफ से डिफाइंट फीलिंग का कहना है कि इंटरव्यू में एआई का इस्तेमाल करने वाले उम्मीदवारों से मुकाबला करना मुश्किल है। मुझे लगता है कि यह एक निजी फैसला है कि कोई नौकरी पाने के लिए एआई का इस्तेमाल करना चाहता है या नहीं। लेकिन हम जिस पागल दुनिया में रहते हैं वहां ये भी एक विकल्प है। रोजगार के मामले में बर्बर रोअर 06 का कहना है कि हाल ही में आवेदकों की बाढ़ आ गई है, जबकि कुछ साल पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। जवाब का कहना है कि उनकी कंपनी पिछले 3 सालों में ग्रेजुएट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को 100 से घटाकर 0 कर रही है। अब किसी भी उम्मीदवार को ग्रेजुएशन के बाद आवेदन करना होगा। जोवर और एवरीडे स्केप्टिक दोनों को नौकरी पाने में परेशानी हो रही थी। जो को अभी भी सफलता नहीं मिली है, जबकि स्केप्टिक को नौकरी खोजने में 8 महीने लग गए। दक्षिण अफ्रीका में फैट 89,789 और फिनलैंड में हिस का भी यही मानना है। फिनलैंड का मानना है कि यह एक दशक में सबसे खराब जॉब मार्केट है। तो इसके अनुसार, और मैं मानता हूं कि डेटा संतुलित है, फिर भी आप में से कुछ लोगों के लिए यह अभी भी कठिन समय लग रहा है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप अंततः कुछ न कुछ खोज ही लें, और कम से कम मुझे आशा है कि इससे आपको यह एहसास होगा कि आप वास्तव में अकेले नहीं हैं। मोटे तौर पर ये वास्तव में दुनिया के लिए समायोजन का समय है, और हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि दूसरी तरफ चीजें बेहतर हों। चाहे वह केवल बाजार में सुधार हो या नीचे से ऊपर की ओर संरचनात्मक परिवर्तन, जैसे लोग उद्यमी बन रहे हों या ऊपर से नीचे की ओर समाज में। आखिरकार मनुष्य समग्र रूप से अत्यधिक अनुकूलनीय है। ठीक है, तो मेरी ओर से बस इतना ही। अगर आप कुछ और दिलचस्प देखना चाहते हैं तो मैंने जापान और पश्चिम में जन्म दर में गिरावट पर एक एपिसोड किया है। जब सभी आंकड़े सामने आते हैं जैसे कि वीडियो में, तो ये देखना थोड़ा आश्चर्यजनक है कि आने वाले दशकों में दुनिया की जनसांख्यिकी कैसे बदल जाएगी। मैं इस वीडियो के बाद उस पर क्लिक करने योग्य कार्ड छोड़ूंगा। तो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डोगो है और आप कोल फ्यूशन देख रहे हैं, और मैं जल्द ही अगले एपिसोड के लिए आपसे फिर मिलूंगा। चीयर्स दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। बूढ़ा, मुझे लगता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ।